الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب العجم قرب العالم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بس یہاں پر حاضری ہوتے ہی وہ مناظر نگاہوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں جب حضرت والا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور لاہور کے باہر کو جانے باہر عطا فرماتے تھے. اور ایک ایک مجلس کیسی عجیب. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یہ شعر میں تلاش کر رہا تھا. خانقاہ کی تعریف, کیونکہ عام طور پر خانقاہ کا نیا نام آتے ہی ایک ایسے بزرگ کی شکل سامنے ذہنوں میں آ جاتی ہے جو تعویذ بانٹ رہے ہیں اور دیگے پھڑک رہی ہیں. میں نے تو کھڑکنا, ویسے تو دیگے کھڑکتی ہے لیکن یہاں پھڑکنا استعمال کیا. اور مرد حضرات کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نے تقریر کرتے کرتے کہا خواتین حضرات ہیں. خواتین کا بھی ڈانٹا بندھا ہوا ہے اور قطار لگی ہوئی. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے حقیقت خانقاہ کو پیش فرمایا. اور ایک فرق یہ یاد رکھیے گا, ایک ہوتی ہے درسگاہ اور ایک ہوتی ہے تربیت گاہ. درسگاہ اور تربیت گاہ میں فرق یہ ہے کہ درسگاہ میں جب کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس کتاب کو دوبارہ نہیں پڑھایا جاتا, اور اگر کسی دوسری کتاب میں کوئی مضمون کوئی بحث مقرر آ جائے تو استاد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اور یہ فرما کر بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہوتی ہے درسگاہ, اور ایک ہوتی ہے تربیت گاہ. تربیت گاہ میں کسی ایک بات کو صرف ایک بار نہیں کہا جاتا بلکہ اس بات کا تکرار ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تربیت مقصود ہے. جس طرح سے بچے کو روزانہ دودھ پلایا جاتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کو سیریلیک کھلاتے, اور پھر تھوڑا بڑا ہوا تو آلو کو بالکل باریک کر کے اور نرم کر کے, کیلے کو باریک میش کر کے, और बिल्कुल बारीक करके बच्चे को के लिए उसको सहल और आसान किया जाता है। वक्त आता है वो बच्चा और बड़ा होता है, रोजाना फिर रोटी खाना शुरू करता है। चूंकि ये जो ग़िज़ाए जिस्मानी है ये जिस्म की तरबियत के लिए है, इसलिए इसमें ग़िज़ा का तकरार है। रोजाना रोटी खाते, और अगर इस सर्दी के मौसम में कोई रोजाना पावे खिला दे तो कहेगा माशाल्लाह, मना नहीं करेगा कि पावे की बात, पाए की बात तो बड़े पाए की है। तो तकरार ग़िज़ा है, रोजाना चाय पीता है। तो तरबियत में और तदरीस में ये फर्क है, तज़्का और तरबियत गाह का ये फर्क है कि तरबियत में एक ही बात का तकरार भी होता है, और तकरार इसलिए होता है कि जो मुरब्बी है अपने मुरब्बा जिसकी तरबियत की जाती है उसकी जिस कमी को देखता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए किसी बात को बार बार फरमाता है। जैसे इंसान के जिस्म में अगर खून की या कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर जितनी कमी होती है उसके हिसाब से ग़िज़ा बनाता है इसकी दवा कि 3 महीने में ये कमी इसकी पूरी हो जाएगी और मतलूबा मेयार खून का या कैल्शियम का हासिल हो जाएगा। तो अगर वो 3 महीने की कमी है तो 90 दिन की गोलियां डॉक्टर तजवीज करता है, लेकिन 90 दिन तक वो गोली रोजाना खानी होती है। ऐसा नहीं है कि 90 दिन की गोली एक साथ खा ले, फक्का लगाया और खा लिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि उस दवा का तकरार होता है रोजाना। और यही तकरार उसकी, ये तकरार उसकी तरबियत के लिए है। पहले जमाने में दर्सगाह और तरबियत गाह एक होती थी, उस्ताद पढ़ाता था, पढ़ाने से पहले तरबियत शुरू फरमाता था। इसलिए जब कोई किसी उस्ताद के पास पढ़ता था, सुभान अल्लाह, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर बड़ों में से हैं, हजरत का अजीब मामूल था, किसी तालिबे इल्म के अंदर अगर बड़ाई देखते थे, अकड़पन देखते थे तो उससे जूतियां उठवाते थे, खिदमत पे लगाते थे। ये है तरबियत। और इससे अजीब बात देखिए, जिसके अंदर तवाजो देखते थे उसकी जूती खुद उठा लेते थे। इस बात को कह देना कितना आसान है, ये हजरत का की तवाजो और लिल्लाहियत थी, वो तरबियत कि उससे जूती उठवा रहे, उससे खिदमत करवा रहे, वो फना करने के लिए। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, सख्तियां शेख की हैं फना के लिए, मत समझ, मत समझ इसको हरगिज सितम, ये सितम जुल्म नहीं है, फना करने के लिए, मिटाने के लिए। वो रजाइल, वो गंदे अखलाक और बुरे अखलाक जिसकी वजह से हमारे अंदर कमी है और हम अल्लाह ताला के क़ुर्ब और ताल्लुक़ के खास से महरूम हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए शेख फनाइयत पैदा करने की फिक्र और कोशिश करता है। तो ये है तरबियत का बुनियादी नुक्ता। अब इस पर आइए, हजरत हमारे अहले दिल के दिल से निकले आह आह, बस वही अख्तर है असली खानका। अब ये जो तरबियत गाह है, असल में ये खानका इसी तरबियत गाह का नाम है, ये खानका दर हकीकत तरबियत गाह है। यह हजरत वाला दावत रहमतुल्लाह अलैह ने 2 मरतबा आह फरमाई, आह आह। वजह क्या है कि बीमारियां 2 किस्म की है, एक जाही और एक बाही। जाही बीमारी क्या, अपने को बड़ा समझना, लोगों को हकीर समझना, लोग मेरी इज्जत करें, और मेरी शोहरत हो जाए। ये बहुत शौक है मशहूर होने का, और ये बीमारी अंग्रेजों में भी है, इसलिए अजीब है उनका तो दिमाग ही अजीब है ना। चलते चलते कपड़े उतारना शुरू कर देते, फिर कैमरामैन पहुंच जाता है कि भाई ये मर्ज आपको कब से हुआ, ये हालत आपकी कब से, फिर इंटरव्यू होता है, फिर तस्वीर तस्वीर आती है, खुश हो जाते हैं जी मीडिया में नाम आ गया, मशहूर हो गए। ये मशहूर होने का मरज, हक बात को कबूल न करना, गुनाह करके तौबा न करना, ये सब बीमारी है। और दूसरी किस्म की बीमारी जो बाह की बीमारी कहलाती है, वो उसका तर्जुमा शहवत से है। उसमें तो एक बात यह है कि किसी औरत नजरबाजी की आदत, या किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार होना, या लड़कों के इश्क में, इसी तरीके से दुनिया की मोहब्बत होना, ये भी बाही अमराज में शामिल है, इस शहवत की बीमारी। अब बाह और जाह दो बीमारियां हुई, बाह और जाह। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने शेख से ऐसा ताल्लुक हो, उसकी सोहबत में ऐसा रहे, उससे अपनी ऐसी इसलाह करवाए, आना जाना रखे, उससे ऐसा ताल्लुक पैदा करे, अपने अपने आप को शेख के हवाले करे जैसे मरीज डॉक्टर के हवाले करता है, तो शेख उसके अमराज का इलाज करे। तो जब जाह से जीन निकला और बाह से बा निकला तो क्या बचा, आ आ, दो आए होंगे। तो फरमा यही है, अहले दिल के दिल से निकले आ आ, एक आह नहीं दो आह निकले, बस वही अख्तर है असली खानकाह। इसलिए फरमाए कि देखो हजरत वाला रहमत में अजीब बात फरमाई, ये जो अल्लाह ताला का जो नाम है, अल्लाह ताला जिस तरह से, उनका कोई शरीक नहीं है, उनकी जात में, उनकी सिफात में, उनके कमालात में कोई शरीक नहीं है। उसी तरह से अल्लाह ताला के नाम में भी कोई शरीक नहीं है। बातिल खुदाओं ने मुख्तलिफ नाम रखे, किसी ने अल्लाह होने का दावा नहीं किया। और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, देखो कहो आ और अल्लाह, तो हमारी आ अल्लाह ताला के नाम में पोशीदा है। लिहाजा अब ये आ कहां सिखाई जाती है, खानकाह, यहां भी आ हुई ना, तो खानकाह में आ सिखाकर अल्लाह तक पहुंचाया जाता है। यानी हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह इसकी यूं ताबीर फरमाते थे कि एक होता है ब्यूटी पार्लर, जहां औरत को तैयार किया जाता है ताकि शौहर उसको देखकर खुश हो जाए, लेकिन जाहिरी तौर पर सजाते और संवारते हैं, और वो भी दुआ करते हैं कि उसके बाद के अल्लाह करे लाइट ना जाए। और अगर उस औरत के जाहिर को सवारा लेकिन उसकी बातनी तरबियत नहीं कर सकते, मसलन उसमें गुस्से का मरज है, बदतमीजी की मरज है, तो ब्यूटी पार्लर वाले इस पर काम नहीं कर सकते। मैंने फरमाया कि ब्यूटी पार्लर के अंदर औरत को सजाया जाता है कि ताकि उसका शौहर उसको देखकर खुश हो जाए, खानकाह में बंदों को जाहिरी बातनी तौर पर सवारा जाता है ताकि अल्लाह देखकर खुश हो जाए, उसके जाहिर को भी और उसके बातिन को भी ये सवारा जाता है। और रूहानी बीमारियां कई किस्म की है। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो हिर्स की बीमारी के बारे में हजरत मलफूजात कमालात अशरफिया में बात हजरत की छपी हुई है, फरमाया कि जो हिर्स की बीमारी है ना, मैं तो उसको उम्मुल अमराज कहता हूं। हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत महाशाह शफली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे मैं तो इसको उम्मुल अमराज कहता हूं। फरमा मुहक्किकीन ने जो बात फरमाई है कि किब्र, बड़ाई, अपने को बड़ा समझना, जो बीमारी है जिसके बारे में मुहक्किकीन बुजुर्गान दीन का ये फैसला है कि आखिरु मा यखुजु मिन रास सिद्दीकीन, औलिया अल्लाह का तबका जो सबसे ऊंचा तबका मकाम सिद्दीकियत वाले, उनके से सबसे जो आखिर में जो बीमारी जाती है वो किब्र की बीमारी जाती है, अपने को बड़ा समझना और लोगों को हकीर समझना। दो चीजें इसमें, दो जुज है, एक तो अपने को बड़ा समझना और दूसरे को हकीर समझना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो क्या, यानी अपने इख्तियार से किसी को बड़ा, अपने को बड़ा समझना ऐसे कि दूसरे को हकीर समझे, ये तकब्बुर की बीमारी है, बड़ाई। और अगर ख्याल आया किसी को कि मैं बड़ा हूं, ख्याल आता है लेकिन उस ख्याल को वो पकाता नहीं है और उस ख्याल की नफी करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ये गुनाह और मासियत नहीं है। और अगर किसी ने अपने को इख्तियार से समझा कि मैं बड़ा हूं, ऐसे के लोगों को उसको हकीर समझा, तो ये गुनाह और मासियत है। और अगर किसी को, एक बात है, जैसे एक बड़ा 20 साल का 30 साल का एक शख्स है, उसकी उम्र है, और एक बच्चा 4 साल का है, और इसी तरीके से एक शख्स आलिम है एक गैर आलिम है, एक शख्स को अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया एक के पास नहीं है, अब ये फर्क आया ना। तो अगर अपने उस कमाल की वजह से अपने उस कमाल को अपना कमाल ना समझे और उस कमाल की वजह से किसी को हकीर ना समझे, तो ये साहिबे कमाल कहलाएगा। लेकिन नफी कमाल मकसूद नहीं है, कैसा नहीं कि जी मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, मैंने इतनी इबादत नहीं की, मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, तो ये नफी मकसूद नहीं है, बल्कि इस बात की नफी और इस बात को मना करना मकसूद है कि इस कमाल को अपना कमाल मत समझो, ये अल्लाह ताला की तरफ से। और इसकी बड़ी क्या दलील है, इसकी दलील है, अब देखिए हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम साहब, एक भंगी से पूछा हजरत ने कि भाई कुत्ता कब बालिग होता है, उस भंगी ने कहा कि जब कुत्ता टांग उठाकर पेशाब करता है तब वो बालिग हो जाता है, ये उसकी बुलूगत की निशानी है। अब इमाम साहब को देखिए, कितने बड़े आदमी, कितने बड़े बड़े उलमा फुकहा मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन सुलहा आपके शागिर्द, और जो आपके शागिर्द नहीं वो भी आपकी तारीफ में रतबुल लिसान है, लेकिन इमाम साहब उस भंगी का अदब ऐसे फरमाते थे जैसे उस्ताद का अदब। किसी ने पूछा तो फरमाया कि भाई बात ये कि मेरा उस्ताद है, एक मसले में इसने मुझको समझाया है और एक बात बताइए, मेरा उस्ताद सारी जिंदगी उसका उस्ताद की तरह अदब किया, ये किस बात पर, ये वाकया इस बात पर दलालत करता है इमाम साहब के अंदर बड़ाई नहीं थी। तो वाकया से पता चलता है कैसे कि जी हमने कोई गलती की, किसी ने हमें उस गलती पर तंबीह की, अब पता चलेगा कि मेरे अंदर बड़ाई है कि नहीं है। अगर उस गलती को कबूल कर लिया तो इसका मतलब है कि बड़ाई नहीं है, और उस पर आना का नहीं हो, नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं होता, तो ये अलामत है कि मेरे अंदर बड़ाई मौजूद है, ये अलामत है इस बात। तावीलात पेश की, नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं। हाँ अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि जब अपने बड़ों को कोई बात पेश करे तो अदब से कहे, उसका सलीका और उसका अदब होता है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। और हमारे बड़ों ने इस मामले में तो हकीम उल उम्मत की मिसाल इतनी अजीब है कि अल्लाह अकबर, हजरत ने जो किताब लिखी है तरजीहुर राजे, हजरत की जो, यानी इखलास की अजीब एक मिसाल दे दी, ये तरजीहुर राजे हजरत की वो किताब है हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिसमें हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गलती अगर उनसे हुई, कोई चूक हुई, कोई भूल हुई, उससे जो रुजू किया, उस रुजू को शाया किया, ये है बात। दादा ऐसा नहीं है कि किसी आलिम से, किसी शख्स से, बाप से गलती नहीं हो सकती, लेकिन कहने का अलबत्ता इतना जरूर है जब अपने बड़ों को, अपने बाप को, अपने उस्ताद को, अपने शेख को, किसी को भी बात इंसान भूल जाता है, भूल हो जाती है, कोई बात कहनी हो तो उसके कहने का सलीका और अदब है कि वो बात अदब से पेश करे, भूल हो जाती। अब उस वो बड़ा बाबा, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे अजीब अजीब उनके इखलास के वाकयात है, उसको कबूल किया। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर में से गुजरे। हजरत का एक दफा सफर था, रास्ते में कहीं ठहरे, कांधेला जाना था, हिंदुस्तान में का कस्बा कांधेले के, तो रास्ते में रात आई तो एक सिराय के अंदर ठहरे। वहीं पर एक हिंदू बनिया अपने लड़के के साथ था, उसके लड़के ने सोने की ब्रेसलेट, सोने की अंगूठिया, सोने की चेन, मर्दों के लिए उसका पहनना हराम है, चाहे ससुराल से मिली हो, जिसको हमारे एक दोस्त के बकौल ससुराइल। तो वो अंगूठी, वो ब्रेसलेट, वो चेन ससुराल वालों ने अगर तोहफा भी दिया है तो मर्द के लिए उसका इस्तेमाल हराम है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब उस शौक को कैसे पूरा करे, मिल्कियत में अपनी रखे, कि बीवी से तो सांप नेवे वाला मामला होता ना, सांप और नेवला ऐसी लड़ाई होती है ना, तो मिल्कियत में अपनी रखे, इस्तेमाल के लिए उसे दे दे, कोई वो नहीं कि ये तुम इस्तेमाल करो, शरीका हयात है। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह की बातों में अजीब बात कि बीवियों के हुकूक सिखाए, कि उससे मोहब्बत करो, उसकी गलतियों को माफ करो, ये लाइफ पार्टनर है, दोनों एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो उस बीवी से कहे तुम इस्तेमाल करो, चीज मेरी इस्तेमाल तुम करो, बस ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अब वो उस हिंदू के लड़के ने ब्रेसलेट और सोने की चेन, सोने की अंगूठियां सब, हजरत का मामूल था तहज्जुद के वक्त में उठते हैं, अपना तहज्जुद पढ़ी और सफर पर रवाना हो गए कांधेला के लिए। अब हिंदू की जब आंख खुली तो उसने देखा वो लड़के की सारी अंगूठियां और वो सब गायब, शोर मचा, मालूम क्या भाई कोई शख्स यहां ठहरा था जो गया हो, पता चला एक शख्स था भाई आया था, वही मलंग सा वही गया है, बस किस रस्ते पे गया जी, इस रस्ते पे नजर आता था। अब वो हिंदू बन गया, उसने अपना घोड़ा निकाला और पीछे दौड़ा। हजरत पैदल चल तशरीफ ले जा रहे थे वहां मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब इखलास तवाज़ो क्या चीज होती है, देखिए हिंदू गया और जाके एक थप्पड़ लगाया गुद्दी पर वो लाले ने। हजरत ने पूछा भाई क्या बात है, कहने लगा कि तूने चोरी की है, बदतहजीबी बदतमीज से बात की। हजरत ने फरमाया चलो भाई ठीक है, फैसला करवा लेते हैं, थाने चलते। उसने कहा मैं थाने लेके जाऊंगा। फरमाया चलो लेकिन झंझाने के थाने मत चलना। अच्छा वहीं लेके जाऊंगा, वहां मना कर रहा है ना, वहीं लेके जाऊंगा। और हजरत ने क्यों मना किया, अब आप देखिए अल्लाह पर इखलास देखिए, इसलिए मना किया कि वो झंझाने का जो थानेदार था वो हजरत का मुरीद था, तो वहां हजरत को के इसे इंसाफ ना मिलेगा, ये बेचारा अपनी इंसाफ रसी चाहता है, इंसाफ चाहता है, इसको वहां इंसाफ ना मिलेगा। और वो समझा कि शायद मना करें, जरूर कोई बात होगी, वही लेके जाऊंगा। अब आप बताइए कि एक शख्स इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा अल्लाह वाला, लेकिन तवाज़ो का आलम यह कि उसको मसले के मुताबिक इंसाफ दिलाने के लिए उसी की मदद फरमा रहे और वो इंकार कर रहा है, और बदतमीजी के साथ लेकर गया, नई बात मानी। जब वहां पहुंचे तो जनजाने के जो थानेदार ने देखा कि हजरत आ रहे हैं, वो तो सलूट मारा हजरत की, आई है हजरत कैसे, حضرت کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھو یہ میرا مہمان ہے،